आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी द्वारा विरचित शिवानंद लहरी नामक स्तोत्र के आधार पर भगवान शिव संबंधी भक्ति का भाव भगवान शंकराचार्य जी इन शब्दों पर व्यक्त करते हैं। अपने भाव भगवान के सामने प्रस्तुत करते समय शंकराचार्य जी ने जो शब्द प्रयोग किए हैं उन शब्दों का जो संकलन है उसका नाम है शिवानंद लहरी। स्तोत्र के माध्यम से शंकराचार्य जी अपना कैसा भाव शिव जी के सामने प्रस्तुत करते हैं। अभ्यास के लिए 25वां श्लोक। तवैर्ब्रह्मादीनां जय जय वचो वीरनियमिनां गणानां केलीभिर् मदकलमोक्षस्य ककुदी स्थितं नीलग्रीवं त्रिनयनमुमाश्लिष्ट बपुषं कदा त्वं पश्येयं करदृतमृगं खण्डपरशुं कदा वा त्वं दृष्ट्वा गिरिशतव भव्यङ्घ्रियुगलं गृहीत्वा हस्ताभ्यां शिरसि नयने वक्षसि वहन् समाश्लिष्याग्राय स्फुटजलजगन्धान् परिमलान् अलभ्यां ब्रह्माद्यैर्मुदमनुभविष्यामि हृदये करस्थेः माद्रौ गिरिशनिकटस्थे धनपतौ गृहस्थे स्वर्भुजा मरसुरभिचिन्ता मणिगृहे शिरस्ते सीतांसौ चरणयुगलस्त्यखिलशुभे कमर्थं दासीहं भवतु भवदर्थं मम मनः सारूप्यं तव पूजने शिव महादेवेति संकीर्तने सामीप्यं शिवभक्तिधूर्यजनता साङ्गत्यसंभाषणे सालोक्यं च चराचरात्मकतनु ध्याने भवानीपते सायुज्यं मम सिद्धमत्र भवति स्वामिन् कृतार्थोऽस्म्यहम्। स्तवैर्ब्रह्मादीनां जय जय वचोभिर्नियमिनां गणानां केलीभिर्मदकलमहोक्षस्य ककुदी स्थितं नीलग्रीवं त्रिनयनमुमाश्लिष्ट वपुषं कदा त्वं पश्येयं करधृतमृगं खण्डपरशुं स्तवैर्ब्रह्मादीनां। भगवान शंकराचार्य जी भगवान शिव की स्तुति करते हुए उस अवस्था का वर्णन करते हैं जिस समय सभी देवी देवताओं ब्रह्मा विष्णु आदि इंद्र कुबेर भगवान शिव के सान्निध्य में रहकर उनकी महिमा का गान करते हैं स्तोत्र गान करते हैं। स्तवेर ब्रह्मादीनाम भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए दो चीज बहुत उत्तम साधन है। शास्त्रों में कहा है वेद में कहा है गुरुओं ने कहा है जलधारा प्रियो शिव आगे स्तोत्रों में ये प्रसंग आएगा। भगवान शिव कैसे कैसे प्रसंगों से प्रसन्न हुए हैं, भक्तों ने कौन सी साधना की, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे साधनों से और साधना के द्वारा भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उसके अविलसित वरदान प्रदान किया। ये सारे प्रसंग स्तोत्रों के माध्यम से शंकराचार्य जी उन पौराणिक प्रसंगों का स्मरण करते हुए भगवान शिव जी का स्तुति करते हैं। तो भगवान शिव को प्रसन्न करने का दूसरा माध्यम है स्तोत्र, स्तुति गान। आप लोगों ने शिव तांडव स्तोत्र सुना हो, और भगवान शिव की स्तुति में रावण ने जो स्तोत्र गान की, केवल स्तुति गान मात्र से भगवान शिव प्रसन्न हो गए, ये वर्णन शिव पुराण में भी है। और उसका पुष्पदंताचार्य जी ने बड़ा सुंदर ही ढंग से अपने स्तोत्र शिव मेमनी स्तोत्र में एक श्लोक में उसका वर्णन किया है। एक समय की बात है कि रावण को इच्छा हुई कि रोज रोज लंका से प्रातः काल उठकर कैलाश आओ और भगवान शिव की पूजा करो और फिर लंका जाओ शासन करो। बड़ा झंझट की बात है। अब हमारे पास साधन है और सामर्थ्यता है, तो कभी कभी तमोगुणियों को ये लगता है कि मेरे पास सामर्थ्य भी है और साधन भी है, तब इस सामर्थ्य और साधन के माध्यम से भगवान भी मेरे मुट्ठी में हो जाएंगे। ऐसा किसी किसी को तमोगुणियों को ऐसा अभिनिवेश, ऐसा घमंड होता है। रावण भी भगवान का भक्त तो था, लेकिन तमोगुणी भक्त था, तामसिक भक्त था, सुत्त सात्विक भक्त होता तो ऐसे उद्दंडता वो कभी भी अपने जीवन में न दिखाता। तो भक्ति में भी तीन भेद हैं, सात्विक भक्ति, राजसिक भक्ति और तामसिक भक्ति। तो सात्विक भक्ति का फल और सात्विक भक्ति किन भक्तों ने की, ये सब पुराण में भरे पड़े हैं उदाहरण। राजसिक भक्ति का उदाहरण शास्त्रों में पुराणों में बहुत है, किन्होंने की और राजसिक भक्ति का प्रयोजन किसको क्या प्राप्त हुआ है, और तामसिक भक्ति किन्होंने की और उनको क्या वस्तु प्राप्त हुआ और उनकी क्या हवि क्या गति हुई, ये तमाम पुराणों में ये सारे उदाहरण प्रस्तुत हैं। ये पुराण का विषय है और स्तोत्रों में प्राय करके उन्हीं पुराण के प्रसंगों को ही समावेश किया जाता है, क्योंकि स्तोत्र दो प्रकार के होते हैं, एक दार्शनिक स्तोत्र और दूसरा भक्ति भाव से भरा हुआ स्तोत्र। दार्शनिक स्तोत्र अर्थात जैसे कि प्रातःकाल हम लोग प्रवचन सुन रहे हैं त्रोटकाचार्य जी द्वारा विरचित श्रुति सार समुद्धरणम, उसमें कोई भक्ति भाव का कोई प्रसंग ही नहीं है, है स्तोत्र, स्तुति है, स्तोत्र है, कविता संग्रह है, काव्यात्मक है, लेकिन उसका वस्तु विषय दार्शनिक है, तत्व संबंधी है। और जो भक्ति संबंधी है वह ये सारे स्तुति हैं। तो जो पौराणिक प्रसंगों को लेकर की जाती है वह भक्तियात्मक स्तोत्र है, जो दार्शनिक पक्षों को लेकर की जाती है वह ज्ञान प्रदान होने के कारण तत्वात्मक हैं। तो जैसे श्रुतिसार समुद्धरणम स्तोत्र वो तत्व चिंतन के लिए बहुत उपयोगी है, और जैसे शिवानंद लहरी ये भाव विभोर होकर भगवान के सामने अपने हृदय की व्यथा, अपनी पीड़ा, अपनी भावना उजागर करने की एक माध्यम है, और इन्हीं माध्यमों से हम भगवान शिव के नजदीक हुआ जा सकता है हमको, तो यहां शब्द प्रयोग किया है। रावण के बारे में मैं बता रहा था, धन और शक्ति, शरीरी बल और धन बल और देह बल, रावण में ये दोनों बल थे, शक्ति थी, सामर्थ्यता थी, तमोगुणी था, इसलिए वह उद्दंड था। तो उसको ये लगा कि रोज रोज ये झंझट कौन करे, कैलाश को ही उठाकर मैं ले जाऊं और लंका में रख लूं, तो वहीं अपने आराम से पूजा करते रहेंगे और कैलाश का भगवान शिव का दर्शन करते रहेंगे, क्योंकि सारे पुराणों ने और वेदों ने भगवान शिव कैलाश में नित्य निवास करते हैं। यूं तो भगवान सर्वत्र व्यापक होने के कारण सर्वत्र निवास करते हैं, भगवान शिव निवास न करते हो ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां शिव का निवास न हो। और इसके बावजूद भी कैलाश में वह नित्य निवास करते हैं, जैसे कृष्ण गोलोक में नित्य निवास करते हैं, राम साकेत में नित्य निवास करते हैं, उसी तरह विष्णु वैकुंठ में नित्य निवास करते हैं। वैकुंठ में नित्य निवास करते हुए विष्णु सर्वत्र व्याप्त है, गोलोक में नित्य निवास करते हुए कृष्ण सर्वत्र व्याप्त है, साकेत में नित्य निवास करते हुए राम सर्वत्र व्यापक हैं, इसी तरह कैलाश में नित्य निवास करते हुए भगवान शिव सर्वत्र व्यापक हैं, व्याप्त हैं। जैसे एक टेबल के ऊपर दीपक जला हुआ हो तो दीपक टेबल में नित्य निवास करते हुए अपनी रोशनी के द्वारा पूरे कमरे में व्याप्त है, लेकिन दीपक स्वयं टेबल के ऊपर रह रहा है और वहां रहते हुए रोशनी से सर्व कमरे में सर्वत्र अपनी उपस्थिति बता रहा है। तो उस कमरे में कहीं भी तुम ये नहीं कहोगे कि दीपक की रोशनी इस कमरे में इस जगह पर नहीं है करके तुम जगह निर्देशन नहीं कर पाओगे। इसी तरह परमात्मा की व्यापकता और विशेष अभिव्यक्ति का स्थान ये शास्त्रों में है। दार्शनिक लोग इस तरह आत्मा हृदय में रहता हुआ भी नभ से लेकर शिखा पर्यंत व्याप्त है, आत्मा शरीर में व्याप्त है, सभी शरीर के सब अंग प्रत्यंगों में व्याप्त है। जब अंग प्रत्यंगों में व्याप्त है तो फिर ये क्यों कहा जाता है ईश्वर सर्वभूतानां हृदये से अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में रहता है, ये क्यों नहीं कहा जाता है कि सारे प्राणियों के पूरे शरीर में व्याप्त होकर रहता है, क्यों नहीं कहता? शरीर में व्याप्त होकर भी रहता है और हृदय में भी रहता है, क्योंकि हृदय अभिव्यक्ति का केंद्र होने के कारण शरीर है में परमात्मा रहता है। ये कहने से भक्त लोग, जिज्ञासु लोग, मुमुक्षु लोग मान जाएंगे, स्वीकार कर लेंगे, और शरीर में सर्वत्र व्याप्त है कहेंगे तो नहीं मानेंगे। है तो एक कहानी मुझे याद आ गई इसी प्रसंग में, ऐसे ऐसे भी होते हैं महात्मा, है ना? तो एक महात्मा थे, किसी मठ के बड़े मठाधीश थे, और उनके चेला दो चार चेले भी थे, तो जमींदार महंत थे, महात्मा थे, तो उनकी जमीन थी, जायदाद थी, खेती होती थी। तो एक चेले को कहा कि जाओ खेती में, खेत में जाओ और खेती करो, गुरु आज्ञा, चला चला गया और खेत में खेती करने लग गया है। तो जब खेती करे, फसल पकने की तैयारी हो गए, तो गुरुजी जाए और अपनी उपस्थिति में फसल कटवावे और उसके पूरा झाड़ जुड़ करके उसको बेचकर पैसा लेकर निकल जाए। एक बार चेले ने कहा कि महाराज ये क्या करते हो, साल भर मेहनत मैं करता हूं, खेत और खलियान मैं करता हूं, फसल मैं लगाता हूं, रक्षा मैं करता हूं, सिंचन और मल जल की व्यवस्था मैं करता हूं, और आप साल में एक बार आ जाते दो दिन के लिए और फसल कटवा लेते और सब कुछ झाड़ जुड़कर बेच बाज कर पैसा इकट्ठा करके पैसे को लेकर चले जाते हो। अरे भाई इसमें हमारा भी हिस्सा होना चाहिए, हमको भी कुछ दो, कुछ छोड़ो हमारे लिए। तो गुरु ने कहा कि तेरे को क्यों चाहिए पैसा, तेरे को किस काम का, क्या जरूरत है तेरे को, तू गांव में रहता है, मांग के खा ले, तेरे को सन्यासी बना दिया है, मांगने का अधिकार दे दिया है तेरे को, तो मांग के खाया कर, भिक्षा मांग लिया कर गांव में। तो चेले ने कहा कि गुरुजी आप भी सन्यासी हैं, आपको भी आपके गुरु ने सन्यासी बना दिया था, तो आप भी तो भिक्षा मांगकर खाया करो, फिर मेरी कमाई को पूरा का पूरा उठाकर क्यों ले जाते हो। बोले चेला होकर मुंह लगाता है, है? चुपचाप हम जो कहते हैं वो कर। गुरु जी चल पड़े, इस बार तो चल पड़े। फिर उसने फसल लगाई, तैयार हो गया। जब फसल काटने का समय हुआ, गुरु जी आ गए, काट कूट के सब कुछ बेच बाज के पैसा इकट्ठा कर लिए और लेके चले जाने लगे। तो गुरु ने कहा कि गुरु जी इस बार तो खबरदार, मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा, मुझे कुछ देना पड़ेगा, मेरा भाग मेरा हिस्सा। बोले तो मैं तेरे को कह दिया ना गांव में जा मांग के खाया कर, गांव में तो भिक्षा मिल जाती है, शहरों में भिक्षा नहीं देते हैं, इसलिए शहर में खर्चा की आवश्यकता पड़ती है, है? तो गांव में तो मिल जाती है, दे देते हैं। तो चेले ने कहा कि खबरदार है, अभी आगे ऐसा नहीं कहना, हमारा हिस्सा यहां कुछ रखो। तो बोले हम नहीं रखेंगे, तू क्या कर लेगा। गुरु जी ने कहा हम कुछ भी नहीं रखेंगे, तू क्या कर लेगा। गुरु जी देखो यदि आप कुछ हमको नहीं देंगे तो हम आपको डंडे से मारेंगे। हे क्या बात करता है, गुरु को डंडे से मारना। बोले गुरु जी हम भी समझदार चेले हैं, हाँ हम वहां मारेंगे जहां हमने पूजा नहीं की है, है? डंडे से मारेंगे लेकिन जहां पूजा की है वहां नहीं मारेंगे। सिर में हम नहीं मारेंगे क्योंकि ललाट में तिलक किया है, समझे कि नहीं। आप लोग गुरु की पूजा करते हो तो तिलक कहां करते हो, ललाट में करते हो, सिर में पुष्प रख देते हो, गले में माला चढ़ा देते हो, इसलिए सिर में तो हम नहीं मारेंगे गुरु जी। पांव में इसलिए नहीं मारेंगे कि पांव में भी हमने पूजा की है, चरण में सिर रखा है, प्रणाम किया है। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरोर कृपा। नहीं ना, पूजा हमेशा हमने चरण की है, चरण धोया है, जलपान किया है, तिलक लगाया है, चंदन अक्षता लगाई है, स्पर्श किया है, हमने चरण की सेवा भी की है, मालिश किया है, इसलिए हम चरण में भी नहीं मारेंगे। फिर तो क्या कहता है कहां मारेगा। बोले हमने कमर में मारेंगे, हम आपके है? कमर में मारेंगे, खूब पीठ में मारेंगे, क्योंकि पीठ में ना हमने पूजा की है, ना तिलक लगाया है, ना माला पहनाई है, ना पुष्प चढ़ाया है, ना कुछ किया है, इसलिए हम कमर में मारेंगे। क्या ये ठीक है, है? गुरु क्या चरण में केवल है, गुरु क्या केवल सिर में है, फिर वो गुरु कहां है, बोलो। सर्वत्र है, नख से लेकर शिखा पर्यंत गुरु व्याप्त है। फिर ये क्यों कहा जाता है कि हृदय में रहता है, तो हृदय विशेष अभिव्यक्ति का साधन है, आलंबन है, केंद्र है, इसीलिए परमात्मा हृदय में रहता है, आत्मा हृदय में रहता है, ये कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि आत्मा केवल हृदय में रहता है और जगह नहीं रहता है। गुरु तत्व केवल चरण में या मस्तक में रहता है और कमर में नहीं रहता, जैसे कि वह मूर्ख चेला वो परिभाषा यही कर रहा है। तो ये परमात्मा की व्यापकता है। तो रावण ने विचार किया कि कैलाश को उठा के ले जाऊं, और उठा लिया। बलादा कृष्य भुज बनम, क्योंकि 20 हाथ जब ऊपर खड़ा करता था तो एक बहुत बड़ा जंगल की तरह लगता था। भुज वन, वन माने जंगल है। तो वो कैलाश उठाया तो भगवान शिव को पता लगा कि ये क्या बात है, मेरा निवास स्थान कभी भी विचलित नहीं होता, महाप्रलय में भी कंपित नहीं होता, आज अचानक ये कंपित क्यों हुआ। तो उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो दुष्ट रावण अपने धन मद और बल मद के चलते घमंड हुआ, तमोगुणी रावण ने कैलाश को उठाने की कुचेष्टा की। तो भगवान शिव ने अंगुष्ठ से उस कैलाश को थोड़ा सा दबा दिया, तो कहते रावण ने उठा लिया था पर्वत, उठा लिया, ऐसे उठा लिया जैसे आपके कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया था, इस अर्थ में रावण को भी गिरधारी कह सकते हो, उठा लिया था वो। मेरे तो गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरी पर्वत धरनागर, तो रावण भी इसी प्रकार से कैलाश धरनागर है, उन्हें उठा लिया था। भगवान शिव को जब पता चला अंगूठे से दबा दिया तो रावण उसी पर्वत से दब गया, पर्वत के नीचे आ गया। ये ऊपर न उठाया होता तो पर्वत के नीचे कैसे आता, दब गया। अब छटपटाने लगा, निकल ही नहीं सकता है, ऐसा दब गया। भगवान शिव ने अंगूठे से ऊपर से दबा रखा है तो निकल नहीं सका वो, तो छटपटाने लगा। तो नारद जी पहुंच गए, वहीं शिव महिमा स्तोत्र का प्रसंग है, तो पहुंच गए। नारद जी ने देखा कि अरे रावण, ये तुम्हारी दशा ये क्या हुई, कैसे हुआ? अब रावण को एक तरफ तो नारद जी ने देख दिया, अब तीनों लोक में ये जाके हमारी बदनामी करेंगे, रावण दबा पड़ा है, और दूसरी बात है कि उसको कष्ट है, मुसीबत है, अब क्या करें क्या। तो उसने कहा कि नहीं नहीं नारद जी, कुछ नहीं, हमने विचार किया कैलाश को वहीं लंका में ले जाके रखूं, उठा तो लिया था, पता नहीं क्या हो गया कि मैं कहां असावधानी कर ली कि मैं दब गया हूं, अब ये पर्वत मुझे दबा रहा है, निकल नहीं पा रहा हूं। नारद जी ने कहा कि अरे रावण, तुझे पता नहीं ये पर्वत ने नहीं दबा रखा है, ये तो खुद शिव का नित्य निवास स्थान को तूने जब स्पंदित किया, हिलाया, तो भगवान शिव को पता चल गया, तो उनके संकल्प से ये दबा हुआ है, इस शिव के प्रयत्न से संकल्प से तो दबा हुआ है, अब क्या करें। तो नीतिकारों ने कहा है, जिस जमीन में व्यक्ति गिर जाता है उसी जमीन के सहारे फिर वहीं उठना पड़ता है ना? तुम चलते चलते गिरे कहां थे, जमीन में ना, आसमान में गिरे थे कि जमीन में, हैं? और चलते कहां थे, तो जमीन में चलते थे, और गिरे कहां, तो उसी जमीन में गिर गए। अब यदि उठोगे तो कहां उठोगे, चाहे घुटना टेक कर उठो, चाहे कुर्सी पकड़कर उठो, चाहे किसी का हाथ पकड़कर उठो, उठोगे तो आखिर उसी जमीन में उठना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि जमीन में मुझे गिरा दी इसलिए अब जमीन में उठूंगा ही नहीं, ऐसा होगा? इसीलिए जिस परमात्मा के प्रति अपराध के चलते तुमको ये दंड मिला है, उसी के शरण में जाओ और उसी की कृपा होगी तो ये दंड से तुम मुक्त हो जाओगे, एक समस्या से तुम मुक्त हो जाओगे। नारद जी ने कहा कि लेकिन ऐसा करूं मैं कैसे, मैं तो दबा हुआ हूं। बोले अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, भगवान शिवा संगीत के आचार्य हैं, उनको संगीत अति प्रिय है, संगीत बहुत प्रिय है, क्योंकि सारे संगीत के आचार्य तो भगवान शिव ही हैं। बोले अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, तो विद्वान तो है ही है, शब्दों की राशि तेरे पास कमी नहीं है, एक से एक काव्यात्मक शब्द की खजाना तेरे पास है ही है, अनपढ़ मूर्ख तो है ही नहीं, विद्वान है। और अब रही बात है बाजा की, बात स्तोत्र गान करते समय बाजा बजाने की, बात हमारी मिता बहन कह रही थी कि आप जब प्रार्थना कराते शुरुआत में नमः शिवाय का, शिवाय नमः, हराय नमः, भवाय नमः, मृडाय नमः, उस स्वर के साथ मैं हारमोनियम को भी बजाऊं करके पूछ रही थी। हमने कहा बजाओ, स्वर मिलाकर बजाना, बेस्वर नहीं करना है। तो अब थोड़ा सा अभ्यास कर रही थी तो शायद हाथ में स्वर बैठ गया होगा, तो कल बजाएगी ठीक से है। तो स्वर भी चाहिए है, संगीत के साथ स्वर भी चाहिए है। तो रावण ने कहा कि वो कहां से मैं लाऊं, मैं तो दबा हुआ हूं। नारद जी ने कहा कि अरे तूने क्या नहीं किया है, शिव के लिए प्रसन्न करने के लिए सब कुछ किया है, तूने दस दस सिर भी काटकर खत्म हवन कर दिया है, तो तेरे पास दस सिर है, एक सिर निकाल ले, एक सिर निकाल ले, दस में से एक निकाल ले, और बीस हाथ तो अभी बाहर है ना, तू दबा तो शरीर से है, हाथ तो तेरे बाहर है, एक हाथ निकाल ले और एक सिर निकाल ले और एक तरफ जोड़ दे, तो वीणा बन गया कि नहीं? वीणा कैसे होता है? हैं? वीणा ऐसे ही होता है ना, बाहु एक तरफ लंबा सा बाजू रख दिया, हाथ डोल दिया और सिर एक तरफ रख दिया, सिर बड़ा सिर जैसा एक तरफ होता है ना वीणा में, हैं? तान पूरा होता है ना, बन गया। बोले उसमें तार, बोले तू दूसरे हाथ के जो नसें हैं वो निकाल ले, उंगलियां हैं वो डंडा बना ले, लकड़ी होते है ना वो तार को कसने के लिए, चाबी, उंगलियां तेरे है तो उंगलियां बना ले वो चाबी, और जो नसें हैं हाथ में हैं बाजू में तुम्हारे हाथ में, उसके नस निकाल ले, उसी का तुम तार बना ले। तार बन गया, वीणा बन गए बस, और बाकी जो हाथ हैं 18 हाथ तो फिर भी बचेंगे कि नहीं है? तो स्तोत्र गा और तानपुरा राग आलापते रहो, देख ले फिर तो ये संकट से मुक्त होगा कि नहीं। अच्छा, सच्ची बात बोले, हाँ प्रयोग करके देख ले। उसने किया, रावण तो हठयोगी था, वो कुछ भी आटेगा, वो निश्चय करे तो कुछ भी करने को तैयार है। तो उसने उठा निकाल लिया, एक सिर को अलग किया, एक बाहू को अलग किया, जोड़ लिया और एक हाथ से नसें निकाल ली, अंगुलियां निकाल ली, जोड़ दिया, तानपुरा बन गया और गाना शुरू कर दिया। जटा कटाह संभ्रमं भ्रमन निलिंप निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्ध्वनि धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रति क्षण मम तराधरेन्द्र नंदिनी। इस तरह जब उसने शिव स्तोत्रों की रचना करते हुए दिव्य स्वर सहित बाजा के सहित जब गान करने लगा, तब तो भगवान शिव के कान में वो स्वर पहुंच गया। कान में, भगवान शिव के कान में जब पहुंच गया तो शिव जी से रहा नहीं गया। वो तो नटराज हैं, भगवान शिव तो नटराज हैं, और कोई स्वर मिलाकर मधुर संगीत से गान करने लग जाए और नाचना जानने वाला चुपचाप बैठ जाए, संभव ही नहीं है, है? संभव ही नहीं है। तो भगवान शिव ये भूल गए कि रावण को दंड देने के लिए कैलाश को मैंने दबा के रखा है, ये बात भूल गए और उसी कैलाश में वो नाचने लग गए। रावण गाने शुरू कर दिया और शिव जी नाचने लग गए। अब देखो, हम देखते हैं कभी कभी तो कोई माताएं जो मोटे मोटे शरीर वाले भी होती हैं, तो वह भी कई बढ़िया संगीत होता है, नाच गान का प्रसंग होता है, तो हमको लगता है इतनी मोटी कैसे नाचेगी, लेकिन इतनी हल्के से नाच जाती है, इतनी हल्की से उसके कदम चलते हैं कि मानो कि उसके कदम जमीन को छो ही नहीं रही है, इतना हल्का हो, उसके शरीर के भारीपना कहां गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ, इतनी कलात्मक ढंग से नाचने लग जाती है। इसी तरह भगवान शिव भी तांडव स्तोत्र के साथ और गान के साथ नाचने लग गए, तो इस बात को भूल गए कि कैलाश को दबाकर रावण को मैं दंडित कर रहा हूं, तो पूरा कैलाश हल्का हो गया, रावण निकल गया, जो दबा हुआ था वहां से निकल गया। निकल गया तो खड़े होकर हाथ जोड़कर जय हो भगवान जय हो प्रार्थना करता है। रावण, भगवान शिव ने देखा, अरे तू कहां से निकल के आया, कैसे निकल के आया? महाराज, आपकी बहुत कृपा हो गई है, आप नाचने लग गए कि पर्वत हल्का हो गया और बस मैं निकल आया। मैं नाचने क्यों लगा? बोले क्योंकि हमने गा दिया। तो भगवान शिव गान से भी बहुत प्रसन्न होते हैं, स्वरों से गाई है तो शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। तो यहां लगभग शंकराचार्य जी महाराज शिव जी के बारे में वही भाव व्यक्त कर रहे हैं, तवेरर्थादि तवेश ब्रह्मादीनाम ब्रह्मा आदियों ने आपकी बड़ी सुंदर सुंदर काव्यात्मक पदों के द्वारा आपकी स्तुति गान की है। जय जय बचो वीर नियमिना, और बड़े बड़े नियमी, नियमी माने योगी, यम नियम में नित्य रत हैं, साधना में लगे हुए हैं, अष्टांग योग मान लो या कोई भी मान लो, नियमिन शब्द का अर्थ होता है योगी। बड़े बड़े योगियों ने भी आपके स्तुति गान करते हुए आपके सस्वर एक स्वर से जय जयकार किया है। स्तवेर ब्रह्मादीनाम जय जय बचो वीर नियमिनाम गणानाम केली वीर। तो आप जब कैलाश में विद्यमान रहते हैं तो अपने प्रमथ गणों के साथ आप कभी कभी नृत्य भी करते हैं, है? जब हैप्पी बर्थडे होता है तो हमारे बच्चे जब हमारे नाम का केक ले आते हैं और काटते हैं और मोमबत्ती जलाकर फूंकते हैं, और जब बच्चे एक स्वर से नाती पोते बेटा बहू बेटी जवाई सब एक कर एक स्वर से हैप्पी बर्थडे पापा करते हुए गाते हुए ताली बजाते हुए गाने लग जाते हैं, नाचने लगते हैं, तो बूढ़ा व्यक्ति भी 80 साल का बूढ़ा भी उन नाती पोतों के साथ ठुमके मारने लग जाता है। लगते कि नहीं बोलो? आओ पापा आप भी नाचो, आओ मम्मी तुम भी नाचो, अरे बेटा बूढ़ा हो गया, नहीं 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 नाचो आओ, आज तो आनंद का हैप्पी बर्थडे टू यू पापा। देव जी सब नाचने लगते हैं तो बूढ़ा भी नाचने लगता है। इसी तरह अपने ही बच्चों के साथ हम बूढ़े भी कभी कभी नाचा करते हैं, करते हैं कि नहीं? इसी तरह भगवान शिव भी कभी कभी कैलाश में अपने प्रमथ गणों के साथ नाचा करते हैं। क्यों नाचते हैं? कि हैप्पी बर्थडे मनाते हैं भगवान शिव की। देखो शिव जी का हैप्पी बर्थडे तो है ही नहीं, क्योंकि उसके मां बाप का पता ही नहीं है तो कहां से हैप्पी बर्थडे होगा। आप लोगों को पता है कृष्ण के जन्माष्टमी आप मनाते हो, राम की रामनवमी मनाते हो, किस लिए न मनाते हो रामनवमी? तो राम का जन्मदिन है, क्योंकि राम के मां बाप का आपको पता है, पता है कि नहीं? राम के मां बाप का नाम पता है कि नहीं आपको? है दशरथ कौशल्या। और कृष्ण के मां बाप का भी पता है आपको, है ना? कौन है? देवकी वसुदेव है, इसलिए आप जन्म के बारे में सब जगह वर्णन है और तिथि मिति सब पता है, इसलिए हम जन्माष्टमी भी मना लेते हैं, कृष्ण रामनवमी भी मना लेते हैं, राम का जन्म भी मना लेते हैं, कृष्ण का जन्म मना। शिव जी का जन्म कब मनाए? तो आप लोग कहोगे कि शिवरात्रि, लेकिन शिवरात्रि यदि शिव जी का जन्म है तो तुम्हें यह बताना जरूरी है कि मां बाप भी बताना पड़ेगा, तभी शिवरात्रि शिव का जन्म होगा। बताओ मां बाप कौन है? है बताओ? नहीं है तो फिर कैसी शिवरात्रि को शिव जी का जन्म मानते हो? है? हाँ तो फिर मां बाप प्रकट तो ऐसे भी हो जाते हैं, प्रकट तो देखो मैं बताऊं, हीनो उपमा देता हूं तुम्हें, जब तुम्हारे शरीर में पसीने आते हैं और वो पसीने जब तुम रात को सोए हुए हो और तुम्हारे चादर और तकिए के कपड़ों में पसीने गिर जाते हैं और तुमने आलस्य किए और महीनों भर तुमने उसको धोया नहीं और रोज रोज पसीने उसमें गिरते गए, तब वहां क्या पैदा होंगे पता है? खटमल। ये तो आपको पता है ना, तो खटमल का बर्थडे मनाओ, क्योंकि तुम मां बाप हो खटमल के, है? हो कि नहीं बोलो? प्रमाण सिद्ध हुआ कि नहीं? वो खटमल के जन्म का कारण कौन हुआ बोलो रे? उस खटमल के जन्म का कारण कौन हुआ? तुम हो गए कि नहीं? तो तुम मां बाप हो गए तो बर्थडे मनाओ खटमल हो गए, हैप्पी बर्थडे टू यू खटमल करो फिर, है? क्या ये संभव है? तो वह उसके जन्म का कारण मानेंगे, वो प्रकट हो गए, वो पैदा हो गए बिना कारण के। बिना कारण तो क्यों, बिना कारण तो कैसे कहे, क्योंकि कारण के बिना कार्य होता नहीं है, इसलिए तुम्हारे पसीना ही उनकी उत्पत्ति का कारण हो गया। शिव जी की उत्पत्ति का कारण क्या मानेंगे, इसलिए शिव जी प्राकट्य हो गए। इसलिए शिवरात्रि को शिव जन्म नहीं मनाते हैं, कहीं भी लिखा नहीं है शिव जन्म, शिव प्राकट्य उत्सव। तो गणानाम के लिए भी ही, तो ब्रह्मा आदि स्तुति गान करने लगते हैं, और नियमित योगी लोग जब जय जयकार करने लगते हैं कैलाश में पहुंचकर, ये कैलाश का वातावरण है, हो ये सब कैलाश में हो रहा है, कैलाश के जी दृश्य का शंकराचार्य जी ने यहां चित्रण किया है। और उसी समय में वहां भगवान शिव के जो गण हैं, प्रमथ आदि गण, नंदी वृंदी आदि, नंदी वृंगी नृत्य करता है, मारवाड़ियों में ये भगवान शिव की आरती बहुत प्रसिद्ध है, और ये आरती हमारे दिल्ली संन्यास आश्रम में नियमित गाई जाती है, क्योंकि हमारे गुरु दोनों ही, गुरु के गुरु भी राजस्थान से संबंधित थे, दादा गुरु, और हमारे गुरु जी भी राजस्थान से ही संबंधित थे, और वही परंपरा फिर राजस्थानियों में वो शिव जी की जो आरती है नंदी वृंगी नृत्य करता है। तो ये आरती हम वहां गए गुवाहाटी, तो आसाम गुवाहाटी गए, तो ब्रह्मपुत्र के किनारे में शिव मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। तो सुबह हम जल चढ़ाने प्रार्थना करने के लिए गए, तो दिल्ली आश्रम में रहते हुए ये आरती हम लोग नियमित गाते थे। तो वहां पहुंचे तो वहां पर भी सब मारवाड़ी लोग, व्यापारी, गुवाहाटी में बहुत है मारवाड़ी, वो लोग आकर सुबह शिव जी के आरती गाने लगे, तो यही नंदी वृंदी नृत्य करता है, तो ये आरती गाने लगे। तो हमको ऐसा भ्रांति हो गई, ये दिल्ली संन्यास आश्रम के भक्त लोग यहां आ गए क्या, बाद में पता चला तुम कहां के हो, क्या हो, तो कहा वहीं के हैं, लेकिन इतनी व्यापक है। काठमांडू में भी पशुपतिनाथ में कभी कभी जाते हैं, मारवाड़ी लोग पहुंचते हैं तो यही आरती गाते हैं। तो कैलाश में जब इस तरह ब्रह्मा आदि स्तुति और योगी आदि जब जय जयकार करने लगते हैं, तो भगवान शिव के जो प्रमथ गण नंदी भृंगी आदि हैं, वे सब केलीवीर नृत्य करने लगते हैं, नाचने लगते हैं। तब उस वातावरण को देखकर मदकल महोक्षस्य ककुदी, उस संगीतमय मद में मस्त हुआ हुआ नंदी भी नाचने लग जाता है। बोलो, नंदी भी नाचने लग। तो अब उसी समय में भगवान शिव को कहीं जाना था, तो नंदी के ऊपर चढ़े थे, अब नंदी खुद उस वातावरण में नाचने लग गया, तो भगवान शिव का क्या हाल हुआ होगा विचार करो। ककुदी, ककुदी माने नंदी के ऊपर का जो उठा हुआ भाग है पृष्ठ में, उसको ककुदी संस्कृत भाषा में कहते हैं। कैसा है वो नंदी? महोक्ष, महोक्ष माने नंदी, महोक्ष माने नंदी। भगवान शिव नित्य निरंतर नंदी में सवार करते हैं, भगवान शिव का वाहन नंदी है, ये तो आप लोगों को पता ही है ना। पुष्पदंताचार्य जी ने भी वर्णन किया है भगवान शिव की संपत्ति का, वैभव का, एक श्लोक में सब उल्लेख कर दिया है। महोक्ष खट्वांगम परसुरजिनम भस्म फणिन कपालम चेतीयत तव वरद तंत्रोपकरणम। हे वरदा, सबको देने वाले, वरद माने वरम श्रेष्ठम ददाति इति वरदा, सबको बढ़िया बढ़िया वस्तु देने वाले व्यक्ति आप, तो आपके पास तो इससे भी और बढ़िया वस्तु होगा है? कुबेर को देवताओं के खजाना दिया किसने है? शंकर भगवान ने। इंद्र को ये स्वर्ग का साम्राज्य दिया किसने? भगवान शिव ने। पुराणों में पढ़िया, भगवान शिव की कृपा से ही इंद्र को साम्राज्य प्राप्त हुआ, स्वर्ग का साम्राज्य। और भगवान शिव के प्रसाद से ही, कृपा से ही गंधर्व वह कुबेर पद में आसीन हो पाया। अब कुबेर के खजाना में क्या नहीं है बोलो? दुनिया में बढ़िया से बढ़िया सब चीज कुबेर के खजाने में है। और इतना बढ़िया सा बढ़िया खजाना कुबेर को देने वाले भगवान शिव, वो अपने पास तो उससे भी और बढ़िया बढ़िया चीज रखा होगा, है ना? पुष्पदंताचार्य कहते हैं, यदि ऐसा कोई सोचता हो कि शिवजी के पास तो और भी बढ़िया चीज होगा, तब इंद्र को स्वर्ग दिया तो स्वर्ग में रहने वाला अमृत भी इंद्र को दिया कि नहीं, बोलिए? अब तो अमृत इंद्र को दिया तो भगवान शिव ने तो उस अमृत का भी और अमृत रखा होगा, तो जाके खोजने लगा तो सरस विष मिला। देख लो उन्होंने अपने पास क्या रखा, अमृत देवताओं को दिया और अपने पास विष रखा। और स्वर्ग का खजाना कुबेर को दिया तो अपने पास क्या रखा, ऐरावत हाथी इंद्र को दिया, उच्च स्रव घोड़ा, क्या सब कुछ दिया सभी को, लक्ष्मी विष्णु को दिया, दिया कि नहीं, सब दे दिया, बांट दिया। और अपने पास क्या रखा, बूढ़ा बैल, ऐरावत हाथी और उच्च स्रवा घोड़ा। मैं विष पान तब करूंगा जब ऐरावत हाथी और उच्च स्रवा मुझे दोगे तब। एक कंडीशन रखा होता तो इंद्र आदि देवता राजी होते कि नहीं शिवजी को देने में, क्योंकि इधर विष से जले जा रहे थे, है? अकांड ब्रह्मांड अक्षय चकित देवासुर कृपा, बिना समय में सारा पृथ्वी प्रलय होने जा रहा था, और उस भयावह जहर विष की अग्नियों से लपेट में देवता मनुष्य गंधर्व यक्ष सब उस चपेटे में आए जा रहे थे, और सब एक स्वर से शिवजी की प्रार्थना कर रहे थे कि त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रार्थना कर रहे थे। भगवान प्रकट हो गए और पूछा क्या बात है, बोले देखिए अमृत के लिए हमने समुद्र मंथन किया, निकल गया जय, और ये सब जलाया जा रहा है, बिना समय में प्रलय करने जा रहा है ये विष, क्या करें? बोले इससे क्या हुआ, बोले अमृत निकला था, कौन ले गया, वो स्वर्ग में चला गया, वो देवता इंद्र ले गया, घोड़ा ले गया, ऐरावत हाथी ले गया, उच्च स्रव घोड़ा ले गया, सब चले गए, अब इस विष का क्या करें? बोले किसी की और किसी की हिम्मत नहीं हो रही इसका समन करने का, बोले आप ही कृपा करो महाराज। तो वो उस समय में कंडीशन रखते कि उच्च स्रवा हाथी मुझे दे दो, क्योंकि मुझे कैलाश में चढ़नी है, तो मैं होता तो कह देता महाराज हाथी पहाड़ में नहीं चढ़ सकता, इतना मोटा है, है? तो भगवान शिव मान जाते, किसी ने कह दिया होगा सब मान गए होंगे। तब कहा कि पहाड़ चढ़ने में तो समर्थ क्या है, बड़द है, इसीलिए आप लोग में हमारे चिमन भाई सोलंकी जी कैलाश जाके आए, हमारी उमा जाके आई है, हमारे साथ ही गई थी उमा, तो आप लोगों ने कैलाश में परिक्रमा में देखा होगा याक, याक का प्रयोग होता है, वह याक माने गाय की ही एक प्रजाति है, वो गाय की ही एक प्रजाति है वो याक, और वो इतने ताकतवर होते हैं कि वाह, हमको तो अपने खाली शरीर भी लेकर पहाड़ चढ़ना मुश्किल होता है, और वे याक इतने 50-50, 60-60 किलो वजन अपने पीठ में लेते हैं, और बस एक जोर से श्वास खींच लेता है और कुंभक कर लेता है, और उसके बाद फटाफट दौड़ के ऊपर जाकर खड़ा होता है और जोर से श्वास रेचक करता है। हाँ, वो सब पूर्व जन्म के योगी थे वो, हाँ, नहीं तो उनको मैंने देखा है, उसने जोर से श्वास खींचा, मैं तो 3 बार कैलाश परिक्रमा कर चुका हूं ना, तो मैंने देखा है, जब चढ़ाई करने शुरू करता है तो जोर से श्वास खींचता है और उस श्वास को कुंभक करता है, रोक लेता है, और उसके बाद दौड़ता है, फटाफट फट 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 दौड़ता है और ऊपर पहुंचता है, फिर खड़े होता है और पूरा श्वास को लंबे श्वास छोड़ता है, और दो चार बार इस तरह रेचक पूरक करता है। फिर जब उसको चलना होता है तो पूरी तरह लंबे समय से पूरक करता है, उसके बाद कुंभक करता है और दौड़ पड़ता है। दौड़ते समय कुंभक करता है, फिर जब वो आगे पहुंचता है तो फिर रेचन कर देता है। तो यह बहुत तगड़े है, देवताओं को पता रहा होगा, इसलिए पहाड़ चढ़ने में तो गोत तो जाति विशिष्ट पशु ही समर्थ है महाराज। इसलिए आप बहले ही रखो, ऐरावत हाथी की कामना मत करो। तो महोक्ष खटवांगम टूटा हुआ खाट है, परसु टूटा हुआ फरसा, महोक्ष खटवांगम परसु अजिनम दंती त्वकृत सुंदराम बरदरे। अजिन मने दंती त्वक, बागंबर हाथी की छाला। प्रार्थना मंत्र में सुनते हो कि नहीं, दंती त्वकृत सुंदराम बरदरे त्रैलोक्य सारे हरे मोक्षार्थम कुरु चित्त वृत्ति मछलाम अन्येस्तु किम कर्म भी। अरे मुमुक्षु हो, अन्य कर्मों के आश्रय क्यों लेते हो? तुम्हारे कल्याण के लिए तो दंती त्वक जिसने लपेट रखा है, हाथी की चमड़ी जिसने अपने बढ़िया वस्त्र के रूप में, आगे श्लोक आएगा। सूर्य भगवान शिव के क्या काम करते हैं? तो बोले उनके कपड़े सुखाने का काम करते हैं। आगे आएगा श्लोक में, भगवान सूर्य क्या काम करते हैं बोलो है? भगवान शिव के कपड़ा सुखाने का काम करते हैं। कहीं हाथी मरा हुआ था तो फरसा तो उनके हाथ में था ही, उन्होंने मरे हुए हाथी की चमड़ी निकाल ली, तो वो चमड़ी तो अब गीली है, अब उसको सुखाएगा कौन? तो भगवान शिव ने कहा कि हे सूर्य, मेरे कपड़ा सुखाने का काम तू कर। तो भगवान सूर्य हमेशा शिव जी के कपड़े सुखाने का ही काम करते हैं। आगे श्लोक में आएगा, भगवान शंकराचार्य जी उस प्रसंग को भी यहां अपने श्लोकों में समावेश करते हैं। केली भी ही, तो महोक्ष परसु अजिनम भस्म, राख भी थोड़ा सा रख लेते हैं, फणिना सर पर रख लेते हैं है? कपालम मरे हुए मनुष्यों की खोपड़ी रख लेते हैं। च इति ईयर, हे शिव यही सात वस्तु तुम्हारे पास है। ये सात वस्तु हैं, महोक्ष खटवांग परसु अजिनम भस्म फणिनः कपालम, ये सात वस्तु है। इति इयम, केवल ये गिनती में है आपके पास जो सामग्री है वो भी क्यों रखा है? क्योंकि आप गृहस्थी हैं और अपनी गृहस्थी चलाने के लिए आपने ये रखा है। तंत्रोपकरणम, तंत्र शब्द का अर्थ होता है कौटुंबम, कुटुंब। आपके कुटुंब है, पार्वती साथ में है, गणेश और कार्तिक है, और उनके लिए भी गृहस्थी चलानी है, इसलिए आपको गृहस्थी चलाने के लिए इतनी सामग्री अपने अपने पास रखा है। और शायद ये गृहस्थी आपके पास न होती, एक पत्नी और दो बेटे आपके पास न होते, आप अकेले होते, तो शायद ये सात वस्तु भी वो अपने पास न रखते। ये सारे वस्तु अपने पास रखा किसने? बरद, बढ़िया सा बढ़िया। वर शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम। वरम श्रेष्ठम ददाति इति वरद, बढ़िया बढ़िया वस्तु सब दूसरों को दे देते हैं, और सब लोगों ने जो छोड़ा है किसी के काम ना लगे उसी को लेकर भगवान शिव अपनी गृहस्थी का गुजारा कर लेते हैं। गणानाम केली भीर मदकल महोक्षस्य ककुदी, तो बूढ़ा बैल रखा। भागवत में बैल को धर्म का प्रतीक माना है ना? पृथ्वी और नंदी के संवाद में है, पृथ्वी गाय का रूप धारण करके खड़ी है और नंदी बैल धर्म बैल का रूप लेकर खड़ा हुआ है। परीक्षित जब घूमे अपने साम्राज्य का अवलोकन करने के लिए तो उन्होंने एक गाय और एक बैल आपस में संवाद करते हुए देखा। क्या संवाद कर रहे हैं वो दूर से उसने परीक्षित ने सुना। सुनते उसका आश्चर्य लगा और नजदीक जाकर पूछा कि तुम लोग कौन हो? गाय और बैल दिखने में ऐसा लग रहा है लेकिन तुम बात तो बड़े तत्व की बात कर रहे हो। तुम रो रही हो और तुम बड़े दुखी हो और तुम्हारे तीन पांव तो किसने काट लिया है? एक ही पांव में तुम खड़े हो, कैसे तुम एक पांव में खड़े हो? तुम कौन हो? तुम साधारण बैल तो नहीं हो, पशु तो नहीं हो, बोलो तुम अपना परिचय दो। परीक्षित ने जब पूछा तो उस बैल ने अपना परिचय धर्म के रूप में दिया। बोले ये तीन पांव कहां गए तुम्हारे? बोले कली ने काट दिया, तोड़ दिया है और ये चौथा भी तोड़ने की वह कोशिश कर रहा है, चेष्टा कर रहा है ना? चौथा भी तोड़ने की वो कोशिश कर रहा है, लात मार रहा है। एक ही पांव से खड़ा हूं फिर भी वो लात मार रहा है। और पृथ्वी रो रही है कि मैं पृथ्वी हूं, पाप के बोझों से मैं दबी जा रही हूं, मुझे ये असह्य हुआ जा रहा है, लेकिन करें क्या, कोई उपाय तो है नहीं। तो सुना है कि कृष्ण का आविर्भाव होगा तब ये पाप कुछ कम होंगे, तब मेरा बोझा कम होगा। उसी प्रतीक्षा में पृथ्वी में बैठी हूं कि कब भगवान कृष्ण का आविर्भाव होगा। यानी धर्म में आरूढ़ होना चाहिए, ये सिंबल है, ये प्रतीक है। शिव जी ने घोड़ा क्यों नहीं रखा, साणे क्यों नहीं रखा, साणे माने वो भैंस क्यों नहीं रखा? भैंस किसका वाहन है? यमराज का है। और सबसे बड़े यमराज कौन है? सबसे बड़े यमराज, यमराज का भी यमराज कौन है? मृत्युंजय है। तो उनको तो भैंस का भी बाप रखना चाहिए, लेकिन उन्होंने भैंस न रखे, बैल रखा, क्योंकि भैंस को कहीं भी धर्म का प्रतीक नहीं माना, बैल को धर्म का प्रतीक शास्त्रों ने माना है। इसलिए जीवन धर्म के आधार में चलना चाहिए, धर्मारूढ़ होना चाहिए है। उल्टा हो रहा है, हम धर्म के आधार पर चलें, धर्म हमारा संचालक हो, धर्म निर्देशित हो, धर्म जिधर ले जावे हम उधर ही जाना चाहिए। वाहन का अर्थ तो यही ना है, बोलो। बैल के ऊपर चढ़ने के बाद बैल जिधर लग जाए उधर जाना पड़ेगा कि नहीं? तो ये प्रतीक है। महोक्षस्य ककुदी, पीठ में भगवान शिव बैठे, स्थितम वो अवस्था, नीलग्रीवम स्थितम, नीलग्रीवम त्रिनयनम उमा श्लिष्ट बपुसम, पार्वती के सहित बैल के अंदर बैठे हैं, इसलिए उमा श्लिष्ट है, हाँ? उमा पार्वती को साथ में रखा है, उमा श्लिष्ट या अर्धनारीश्वर, ये उमा श्लिष्ट है। वामांगे च विराजति भूधर सुता, वामांगे विराजति यस्य भूधर सुता, देवा पगा मस्तके, भाले बाल विधुर, गले चगरलम यस्यो रसी व्यालराट, गले चगरलम यस्यो रसी व्यालराट सर्व, वामांके च विवाति भूधर सुता। बाएं जंगा में भगवान शिव ने पार्वती को रखा है। देवा पगा मस्तके, देवताओं की नदी सुर नदी गंगा जी को मस्तक में रखा है। भाले बाल विधुर, और मस्तक में छोटा सा चंद्रमा, बाल विधु चंद्रमा को धारण कर रखा है। गले चगरलम नीलकंठम, कंठ में गले में गरल रखा है। और यक्षो यक्षो उरसी, उरसी छाती वक्षस्थल में, व्यालराट सर्पों का राजा, स्वयंभूति विभूषण सुरवरा सर्वाधिपः सर्वदा, सब कुछ तो और दूसरों को दे दिया है, सब कुछ का मालिक होते हुए सब कुछ दूसरों को दे दिया, सर्वाधिपः सर्वदा, और वही स्वयं नो विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि। तुलसीदास जी का श्लोक है ये। संत तुलसीदास जी ने मानस में इस तरह भगवान शिव की स्तुति की है और शिवजी के स्वरूप का ध्यान किया है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि मेरे जीवन में ये अवसर कब आएगा कि मैं भी कैलाश में हूं और ब्रह्मा आदि देवता भी कैलाश में हों, बड़े बड़े सिद्ध योगी भी कैलाश में हों और ब्रह्मा आदि देवता दिव्य वेद मंत्रों के द्वारा आपकी स्तुति गान करें, नमस्ते रुद्रमन्य व उतोत इत्यादि के रूप में, और योगी लोग आपकी जय जयकार करें, आपके प्रमथ गण आपके सामने कैलाश में नृत्य करें और आप पार्वती के सहित बैल के ऊपर विराजमान हों और नंदी भी नृत्य करने लगे, स्थितम इस तरह आप वहां बैठे हों, उस दृश्य को मैं देखूं, नीलग्रीवम, और मैं सतत आपके प्रशंसा करूं कि नीलग्रीवम त्रिनयनम, हे नीलग्रीवा, संबोधन है, हे नीलग्रीवा, हे त्रिनयन, हे उमा श्लिष्ट बपुषम, कदा त्वं पश्येयम्, मेरे जीवन में वो अवसर कब आएगा ये दृश्य को देखने का, कदा त्वं पश्येयम् यतादृशम त्वम, मैं अहम कदा पश्येयम्, मैं कब देख पाऊंगा, कर धृत मृगम खंड परसुम, एक हाथ में आपके खंड परुष टूटा हुआ फरसा हो और दूसरे हाथ में मृग धारण किया हुआ हो, तीसरे हाथ में डमरू और चौथे हाथ में त्रिशूल हो, तो ऐसी भव्य मूर्ति स्वरूप का मैं प्रत्यक्ष चाक्षुष प्रत्यक्ष कैलाश में पहुंचकर मैं कब दर्शन कर पाऊंगा, ये भगवान शंकर के साथ शंकराचार्य जी ने स्तुति की इस भावना से। हमसे एक भक्त ने पूछा दो दिन पहले, महाराज भगवान का दर्शन कब होगा, कैसे होगा, हमको बता दीजिए ना। हमने कहा भक्ति करते जाओ, हो जाएगा कभी न कभी। आपको भगवान का दर्शन कब हुआ था, अब मैं क्या बताऊं भाई, मैं क्या बताऊं कब हुआ था, पता नहीं कब हुआ था, हमारे पास उस समय कापी और कलम नहीं था महाराज, यदि कापी कलम होता, पंडित होते तो जन्म कुंडली दर्शन भगवत दर्शन की कुंडली बना देते, तो उस समय न पंडित जी थे न कापी कलम था न कुछ था, दर्शन हुआ होगा ना आपको, फिर पूछे जा रहे आपको दर्शन हुआ होगा, आपने दर्शन कब किया, हे भगवान। अब मैं यदि कहूं कि मुझे दर्शन हुआ नहीं, तो मेरे प्रति आप साधु होकर भी आपको दर्शन नहीं हुआ है, तो हम गृहस्थी को कहां से होगा, कहेगा वो, मुसीबत है कि नहीं, दर्शन हुआ कहूं कि नहीं हुआ कहूं, है? तो हमने कहा कि देखो बेटा, भगवान को आंखों से देखने की सिद्धांत के पक्ष में हम नहीं है। क्यों नहीं है महाराज, क्योंकि मैं खुद भगवान हूं, क्योंकि भगवान से मैं भिन्न होता तब तो फिर भिन्न व्यक्ति भिन्न का दर्शन करे, जैसे तुम अभी मुझे देख रहे हो, इस तरह भगवान का दर्शन संभव नहीं है। भगवान का दर्शन होता है, अनुभूति को ही दर्शन कहा है, भगवान का दर्शन चाक्षुष दर्शन नहीं, भगवान का दर्शन है भाव दर्शन, हृदय में अनुभव करना, अनुभूति। तो शास्त्रों ने ये कहा है, गुरुओं ने कहा है कि तुम ही परमात्मा हो, तो क्या किसको देखने की कोशिश करोगे, और तुम भगवान को देखने की कोशिश करते हो, चेष्टा करते हो, इसलिए भगवान नहीं दिखते है ना, क्योंकि दृष्टा दृश्य बन नहीं सकता है, अष्टावक्र गीता में तो कह दिया है, अयमेव ते वन्द द्रष्टारं पश्यसि इतरम्, दृष्टा को तुम दृश्य के रूप में देखना चाह रहे हो और जबकि दृष्टा दृश्य बन ही नहीं सकता, इसलिए आज तक तुमको भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तुम लोगों को हुआ है, किसी को हाथ खड़ा कर दो भाई, है? अरे स्वप्न में तो बहुत हुआ है, स्वप्न में हुआ है, स्वप्न में तो भाव दर्शन है, संस्कार दर्शन है, और स्वप्न के दर्शन को तुम सत्य मानकर नाक बड़ा नहीं कर लेना, उससे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। हाँ, स्वप्न में तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, बड़ा विचित्र है। तो और आगे कहते हैं शंकराचार्य जी दूसरे श्लोक से, कदा वा त्वं दृष्ट्वा गिरीश तव भव्यंग्रियुगलम गृहीत्वा हस्ताभ्यं शिरसि नयने वक्षसि वहन् समाश्लिष्याग्राह्य स्फुट जलज गन्धान् परिमलान् अलभ्यां ब्रह्माद्यैर् मुदमनुभविष्यामि हृदये। भगवान शंकराचार्य जी इस समय एक साधारण भगवान शिव के भक्तों के हृदय की भावना को प्रकट कर रहे हैं। मान लो वह अपने हृदय से अपने आप से वह शंकराचार्य एक साधारण क्षुद्र तुच्छ भक्तों के हृदय में बैठे हों और वो क्या कह रहा हो उस भाव को इन श्लोकों से व्यक्त कर रहे हैं। अन्यथा खुद शंकराचार्य जी इस प्रकार के भाव व्यक्त करे ये हमें विश्वास नहीं होता। समझे कि नहीं? कदा वा त्वं दृष्ट्वा गिरीश तव भव्यांग्रि युगलम। मेरे जे गिरीश, गिरीश माने गिरी, गिरी माने पहाड़। गिरे पर्वते सयति निवसति इति गिरीश, पहाड़ में जो शयन करे, पहाड़ में जो निवास करे, व्यक्ति वहीं सोता है जहां वह निवास करता है ना? व्यक्ति वहीं सोता है जहां निवास करता है और जहां सोता है वही उसका निवास है। कैलाश माने गिरी पहाड़, भगवान शिव का निवास स्थान है, इसलिए वहीं शयन करेंगे वो। तो इसलिए शिव जी का नाम हुआ गिरीशा, गिरी ईशा, पहाड़ के भी स्वामी है वो, क्योंकि पहाड़ सब उन्हीं के मालिकत्व में रहता है। इसलिए गिरी के ईशा, गिरीशा, गिरी शयनत्वा गिरीशा, गिरे ईशत्वाद गिरीशा, तो पहाड़ के स्वामी। पंजाब की तरफ इधर जाओ, नैना देवी, चिंतपूर्णी, वैष्णव देवी, तो वहां जब चढ़ाई करते हैं भक्त लोग तो जय जयकारा करते हैं, जय हो पहाड़ वालियां बोलते, पहाड़ों वालियां दी जय हो, है पहाड़ वाली की जय हो, माने पहाड़ में रहती है इसलिए उसका जयकार हो। तो पार्वती माने देवी जो है, कोई भी ये नहीं कहता है कि मैदान वाली की जय हो, ये नहीं कहता है, पहाड़ वाली की जय कहते हैं, है? क्योंकि वही प्रसिद्ध ज्यादा ज्यादा से पूरा प्राचीन मंदिर है देवी की शक्तिपीठ आदि, पहाड़ पहाड़ों में ही है। तो इसलिए पहाड़ों वालियां। तो इसी तरह यहां पहाड़ वाले होने के कारण भगवान शिव को गिरीश ये संबोधन है, हे गिरीश तव कदा वा त्वं दृष्ट्वा, मेरे जीवन में ऐसा अवसर कब आएगा जब मैं आपको प्रत्यक्ष देखूं, आपको देखूं दृष्टवा देख कर, और तब भव्यांग्री युगलम, आपके सारे चरणों में, आपके जो कमल चरण कमल हैं, कमलों में सारे शुभ विद्यमान है। आगे के श्लोक में आएगा भव्यांग्री युगलम माने चरण कमल, जो हर मंगल प्रदा हैं, हर भक्तों को मुमुक्षुओं को कल्याण प्रदा हैं, ऐसे जो आपके चरण कमल हैं, गृहीत्वा आपके चरण कमलों को हस्ताभ्याम जोर से पकड़ के, हैं? आपके सान्निध्य में रहने का अवसर कब प्राप्त हो, वो अवसर कब हो आएगा, और मेरा जीवन तब धन्य होगा कि कैलाश में आंखों से आपके दर्शन करता रहूं और हाथों से आपके चरण कमलों को जोर से पकड़कर सेवा करता हूं। गिरीश नयने वक्षसि वहन, हाँ, और नयन नेत्रों से आपका दर्शन करूं या आपके नेत्रों से उस समय आपके नेत्र भंगिमा आप थोड़ा सा आंखों से मुझे देख लें। समाश्लिष्याग्राह्य और आपको अंकमाल में करूं। समाश्लिष्य का अर्थ होता है कि आपको अंकमाल करने का। एक भक्त भगवान को मिले तो अंकमाल करते हैं, भक्त भक्त को ही मिलता है तो अपने प्रिय उत्तम भक्त मिलता है तो तभी आलिंगन करता है भक्त, तो परमात्मा को मिलता है मिलेगा, परमात्मा मिलेंगे तो अंकमाल तो करेगा ही। समाश्लिष्य यानी परमात्मा के साथ आलिंगन करते हुए अंकमाल करते हुए स्फुट जलज और आंखों से निकले हुए आंसू, और किस प्रकार का वो आंसू होगा तो गंधान परिमलान पुष्पों के सुगंध से भरे हुए नेत्र के जो आंसू से सारा शरीर भीगा हुआ हो ऐसा दृश्य ब्रह्माद्येर अलभ्यम। ब्रह्मा आदि बड़े बड़ों को भी कभी भी प्राप्त न हो सकने वाला ऐसा दृश्य मुझे कब प्राप्त होगा? और तभी प्राप्त होगा जब आपकी पूर्ण कृपा होगी, तब मुझे वो प्राप्त होगा। जिस पर आपकी कृपा होगी उसी को ही ये अवसर प्राप्त होता है। न लभ्याम ब्रह्माद्येर मुद मनु भविष्यामि हृदय, और उसको उस दुर्लभ को भी मैं प्राप्त करूं और मैं प्रसन्न हूं, हृदय में मैं मुद हूं प्रसन्न हूं, ये अवसर कब प्राप्त हो? और आगे कहते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, बड़ा भाव भरा हुआ श्लोक है ये। करस्थे हे माद्रव गिरीश निकटस्थे धनपतौ गृहस्थे स्वर्भुजां अमर सुरभि चिंतामणि गृगणे शिरस्ते सीतांसौ चरणयुगले अस्थि अखिल शुभे चरणयुगलस्थि अखिल शुभे कमर्थं दास्येऽहं भवतु भवदर्थं मम मनः। हे शिव करस्ते हे माद्रव, स्वर्णमय पर्वत तो आपके हाथ में विद्यमान है, सोने का पर्वत तो आपके ही हाथ में है। आपको सोने का पर्वत आप लोगों ने देखा है कि नहीं? नहीं देखा है? सोने का पर्वत देखना हो तो पोखरा आ जाओ नेपाल, तो हम आपको रोज सोने का पर्वत का दर्शन करा दें। लेकिन सोना देंगे नहीं आपको, दर्शन करा देंगे, छूना नहीं देंगे, सोना भी नहीं देंगे, दर्शन कर पाओगे। ये दृश्य हमारे पोखरा में जो आश्रम है वहां से प्रतिदिन प्रातः काल जब सनराइज होता है, पूर्व दिशा से जब सूर्य उदित होते हैं, तब बाल सूर्य के जो किरण हैं प्रकाश, जब सबसे पहले वो हिमाल में बर्फों से भरा हुआ उस पहाड़ों में धवलगिरी, उसका नाम है धवलगिरी, लेकिन प्रातः काल वह सुवर्णगिरी हो जाता है, रजतगिरी की जगह सुवर्णगिरी हो जाता है। क्या ऐसा लगता है कि सोने सोने का ये पहाड़ है प्रातः काल, मनमोहक दृश्य है। और सायंकाल जब सूर्य अस्त होने लगते हैं तो फिर वही दृश्य दोहराता है। सनसेट के समय में भी जब सब नीचे के अंधेरा हो जाता है और उस पहाड़ के चोटियों में सूर्य के किरण पड़ते हैं, सायंकालीन किरण, बिल्कुल सोने का पहाड़ है, तो वह प्रत्यक्ष देखना हो तो नेपाल आ जाओ भाई। आपको रहने का बैठने का खाने का सब फ्री है, सब टोटल फ्री। आपको केवल अपने भाड़ा लगा के खर्चा करके वहां पहुंचना है, खाना पीना रहना सब फ्री, क्या बढ़िया है। बहुत लोग गए हैं यहां से, हैं बहुत लोग गए हैं, अब कुछ लोग नहीं गए, हमारे रमण भाई गए हो ना, तुमने वो दृश्य देखा है। हाँ, उमा गई है पोखरा के आश्रम में, और भी बहुत से नाम याद नहीं हो रहा है। हाँ, हाँ हमारे वो गए, क्या नाम, सरोज बहन, दोनों गए हैं देख लो, और ये भी गए, नाम याद नहीं है, है? ये भी गई है, हाँ तुम हैं, उर्मिला गई है, उनके पति पत्नी बिमला, हाँ पति पत्नी दोनों गए हैं, वो मीना गई है, उनके पति पत्नी दोनों गए हैं, क्या रहे दस दस दिन वहां रोज। हेमाद्रव, हेम माने सोना, आर्द्र पर्वत, करस्त हेमाद्रव, आपके हाथ में तो सुवर्ण से भरा हुआ पहाड़ विद्यमान है। निकटस्थे धनपतौ, और धनपति कुबेर, वो तो निकटस्थे आपके चरणों में हाथ जोड़कर बैठा रहता है। गृहस्थे स्वरभूजा, स्वर भू जा, ये तीन अलग अलग पद हैं। स्वर माने स्वर्ग, भू माने स्वर्ग रूपी भूमि में, जा माने उत्पन्न हुआ हुआ वृक्ष, स्वर भू जा कल्प वृक्ष। स्वरभुजा का अर्थ क्या हुआ, स्वर माने स्वर्ग, भू माने स्वर्गीय जमीन में, जा माने उत्पन्न होने वाला उद्भिज्य कल्प वृक्ष। गृहस्थे वो तो आपके घर में पड़ा है, कल्प वृक्ष आपके घर में पड़ा है, सोने का पहाड़ आपके हाथ में है, और धनपति कुबेर आपके चरणों में हाथ जोड़कर बैठा है। सुरभि, अमर सुरभि, अमर माने देवता, देवताओं की गाय, अमर सुरभि, हम लोग जो जिस गाय के दूध खाते हैं मर सुरभि है, समझ गए कि नहीं, वो भी मरती है, हम भी मरते हैं उसके दूध पीने वाले, दूध देने वाली वो गाय भी मरती है, दूध पीने वाले हम भी मरते हैं, इसलिए वो गाय का नाम क्या है, मर सुरभि। और शिवजी के पास वो गाय है, उसका नाम क्या है, अमर सुरभि, कामधेनु गाय, देवताओं की गाय, कामधेनु गाय, वो आपके गृहस्थ में घर में ही पड़ी हुई है, बैठी है। और चिंतामणि गणे, जिसको स्पर्श करके हाथ में लेकर संकल्प करो, जो संकल्प करो वो पूरा करे, ऐसा चिंतामणि तो आपके यहां भरा पड़ा हुआ है। गण शब्द का अर्थ समूह, ऐसे तो एक मणि नहीं, हजार मणि, हजारों मणि आपके यहां पड़ा है। सिरस्ते सीताम सऊ, और अमृत तो आपके सिर में पड़ा है, सोम, सोम माने चंद्रमा, सोम माने अमृत, वो तो आपके सिर में ही है। सिरस्ते सीताम सऊ, चरण युगलस्ते अखिल सुबे, संसार में जितने भी शुभ और मंगल और कल्याणकारी पदार्थ वस्तुएं आदि हैं वो सब तो आपके चरण में है। चरण युगले, आपके चरण, हाँ। कमर्थम दास्ये हम, जब ये अवस्था आपकी है तो आपको मैं क्या दे सकता हूं, कम अर्थम दास्ये हम, अहम कम अर्थम वस्तुम दास्ये, आपको मैं क्या दे सकता हूं, अर्थात सब कुछ आपके पास है तो मैं क्या दूंगा, मैं ले जाकर एक हीरा का टुकड़ा आपको दूंगा तो क्या वो हीरा कल्पना चिंतन करते ही सारे मनोरथ पूरा करने में समर्थ होगा, नहीं होगा। और आपके पास तो वो वस्तु है कि जो कल्पना करते सारे मनोरथ पूरा करे, चिंतामणि है। मैं आपको बेलपत्ता ले जाकर दे सकता हूं, और कल्प वृक्ष आपके पास ही है तो उसको बेलपत्ता क्या देंगे भाई, है? कमार्थम दास्ये हम, भवतु भवद अर्थम, एक चीज आपके पास नहीं है, शंकराचार्य जी कहते हैं एक चीज आपके पास नहीं है, वो मैं दे सकता हूं यदि आपको चाहिए तो। शिव जी के पास क्या नहीं है, मन नहीं है, हाँ ये निश्चित बात है, वो मन नहीं है, और मन नहीं है इसीलिए आनंद में है। और आपके पास मन है कि नहीं है? इसलिए सारे दुख का जड़ क्या है? ये मन है। मन एव मनुष्याणाम कारणम मंद मोक्षयो, बंदाय विषयाशक्ति। हमारे पास जो मन है वह विषय में आसक्त हुआ हुआ मन है, इसीलिए वो हमको बंधन में डाल रहा है, इसलिए हमको परेशान करता है। मोक्षम निर्विषयकम मन, वही मन यदि विषय रहित विषय को ग्रहण न करे और निर्विषयक निर्विषयता को ग्रहण करे, क्योंकि परमात्मा विषय नहीं है। परमात्मा का नाम क्या है? निर्विषय। परमात्मा शब्द है कि रस है कि गंध है कि स्पर्श है, रूप है? क्या है परमात्मा? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांच विषयों में से परमात्मा कौन सा विषय है? कोई नहीं है, इसलिए परमात्मा क्या हुआ? निर्विषय। और निर्विषय को मन यदि विषय बनावे तो मन का कल्याण हो गया, सबका कल्याण हो गया। और शब्द स्पर्श रूप रस गंध को विषय करता है मन, इसीलिए सारे अनर्थ, क्योंकि ये विषय ही हमारे अनर्थ का कारण है। इसलिए हे शिवा, आपको देने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। आपके पास मन नहीं है, यदि चाहिए तो वो मैं आपको दे सकता हूं। मेरे मन को ग्रहण करके हैं, मेरे भाव को स्वीकार करो और मुझे सुखी करो। मन आप ग्रहण कर लोगे, मैं अपने आप ही सुखी होऊंगा। ये आप मन आपने ग्रहण नहीं किया, इसलिए मुझे परेशान कर रहा है। और क्या कहेंगे, कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।